हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 16। कृपया इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति दीशतां तमोऽन्धम्। संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससोऽनुमुपया मे गुरुं मुनीना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 16। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूची कह रहे हैं, शुश्रूषु शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थनिषेवणात् शुश्रूषु श्रद्धधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवणात् 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 शुश्रूषु श्रद्धधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवणात्।
शब्दों का अर्थ देखिए। शुश्रूषो अर्थात श्रवण में व्यस्त, यानी जिसके अंदर श्रवण करने की इच्छा हो। श्रद्धधानस्य अर्थात श्रद्धा पूर्वक, यानी कि आप जो भी श्रवण कर रहे हो उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। वासुदेव यानी वासुदेव की कथा यानी संदेश या कथा में रुचि यानी लगाओ। स्यात् यानी संभव बन जाता है। महत सेवया यानी शुद्ध भक्तों की सेवा करके। विप्रा हे द्विजगण। पुण्य तीर्थ यानी समस्त पापों से शुद्ध हो की निशेवणात् सेवा से। अनुवाद देखिए। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त हैं उनकी सेवा करने से महत सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वसुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। अब तक हमने जितने भी श्लोक सुने हैं उससे एक ही बात ना समझ में आती है कि यदि हमारी हृदय में भगवान की कथा के प्रति रुचि नहीं है तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। कहा ना, धर्मस्य सुनिश्चित पुंसाम विश्वक से न कथा सुयह नोत्पाद यदि यदि रत्य श्रम एव ही केवलम। 8.1.2.8 में ऐसे बताया। और उसके बाद यही बताया कि अगर आप भगवान की कथा में रुचि नहीं रख रहे हो फिर ना हृदय की ग्रंथि टूटेगी और ना ही हृदय के अनर्थ खत्म होंगे। तो इसका मतलब होता है कि हमें हमारे हृदय में भगवान की कथा के प्रति रुचि होना बहुत बहुत आवश्यक है। और क्योंकि हमारे इस संसार में कोई भी कार्य करते हैं यदि उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो फिर सारा कार्य जो है वो व्यर्थ हो जाता है। तो प्रसन्न होते हैं भगवान के उनकी कथाएं श्रवण की जाए। और आगे हमने कल जो श्लोक नंबर 14 में क्या था, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्ति तव्यस्य देयः पूज्यस्य नित्यदा, के हृदय को एकाग्र करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कोई भी भगवान की सेवा जो हम कर रहे हैं वो बहुत रुचि के साथ प्रेम के साथ करनी चाहिए। और उसके बाद श्लोक नंबर 15 में बताया, यदनोध्यासिना युक्त कर्म ग्रंथ निबंधन सिंदन्ति कोविदास्तस्य कोन कुरियात कथारते। इतना सुनने के बाद, इतना बताने के बाद सूत्र गोस्वामी ने कहा कि ऐसा कौन होगा जिसको हृदय के अंदर भगवान की कथा में रुचि नहीं होगी, ऐसा कौन होगा। तो ऐसे लग रहा था जैसे वो ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको भगवान की कथाओं में रुचि नहीं होती है। तो ऐसा है कि हो सकता है उस समय हम ऐसे सोचें कि सोनिक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से एक और प्रश्न पूछा कि चलो हमने मान लिया कि वासुदेव की कथा में रुचि होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक नहीं होगा तब तक हम कभी भी अपने हृदय को पवित्र नहीं कर सकते और भगवान में हमारा मन नहीं लग सकता। क्योंकि कथा में रुचि नहीं होगी, श्रवण नहीं करना चाहेंगे तो कीर्तन नहीं हो सकेगा। जब हम श्रवण नहीं करना चाहेंगे तो भगवान के चरणों के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होगी। तो अगर किसी के हृदय में भगवान की कथा में रुचि नहीं है तो ये रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, कोई तो तरीका बताइए। कि अगर नहीं है, आप तो कह रहोगे कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके हृदय में भगवान के लिए, भगवान की कथा के लिए रुचि नहीं हो। लेकिन अगर हम जैसे कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनको भगवान की कथा में रुचि नहीं होती है, जो आते भी है ना सत्संग में, क्लास में आते हैं तो भी क्या सोचते हैं आज माँ प्रसाद में क्या बनाएंगे, क्या फीस्ट है, पूरा ध्यान उसी में खुशबुओं में जा रहा होता है। ऐसे नहीं होना होता है। ये भगवान का प्रसाद खाना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। भगवान का प्रसाद खाने से भगवान को जो अर्पण किया होता है ना, जो शुद्ध भक्तों के द्वारा हम अर्पण होता है और हम खाते हैं, उससे हमारा हृदय बहुत बहुत पवित्र होता है। तो अच्छा है यदि कोई है ना प्रसाद खाने की इच्छा से भी भगवान के मंदिर जाता है, लेकिन कथा में रुचि होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वो कैसे उत्पन्न हो, उसका उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं सूत गोस्वामी। कहते हैं, शुश्रूषु श्रद्धदानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्था निषेवणा। यानी चार, यहाँ पर चार चीजें बता रहे हैं कि ये चार अगर हैं, ये चार चीजें अगर किसी के पास हैं या वो करता है तो उसकी रुचि उत्पन्न होती है भगवान की कथा के प्रति, भगवान की कथा को सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो पहला है शुश्रूषो। शुश्रूषो का मतलब होता है सुनने की इच्छा। अभी देखो, रुचि का मतलब होता है बहुत अच्छी लगने लगे, जिसके बगैर कथा के बगैर रहा ना जाए। लेकिन अगर उससे पहले आपके अंदर सुनने की इच्छा होना आवश्यक है, वो आपको कोई नहीं दे सकता। इच्छा आप अपनी करोगे भगवान। एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर डिजायर। भगवान स्वयं कहते हैं कि आपकी जो इच्छा होगी ना, या तिच्छसी तथा करो, सब कुछ बता दिया लेकिन इच्छा आपको अपनी प्रकट करनी पड़े। यदि किसी के हृदय में श्रवण करने की इच्छा मात्र हो कि बस मैं सुनना चाहता हूँ, प्रीति नहीं है भगवान के प्रति, लेकिन इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मैं, मुझे श्रवण करना है, उसके बाद ही संभव है कि उसे कथा में रुचि हो। लेकिन यदि इच्छा ही नहीं है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसके हृदय में भगवान के बारे में श्रवण करने की इच्छा नहीं है, जो सुनना चाहता ही नहीं है, तो स्वयं भगवान भी यदि आ जाए ना तो भी उसकी भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। भगवान स्वयं दुर्योधन के सामने खड़े थे, अपना विराट रूप भी दिखाया, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं थी, तो रुचि प्रकट नहीं हुई भगवान की, श्रद्धा प्रकट नहीं हुई भगवान के प्रति। तो इच्छा होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। देखो क्या होता है कि अगर, इसे उदाहरण देते हैं, अगर आपके घर में कोई आना चाहता है तो सबसे पहले क्या होगा, आप क्या करोगे, अंदर से कुंडी खोलोगे। अगर आप अंदर से कुंडी नहीं खोलोगे तो कोई चाहे कितना ही आने की इच्छा करे, परंतु वो नहीं आ सकता क्योंकि अंदर से दरवाजा लॉक है। उसी तरह हृदय जो है वो अंदर से लॉक है और आप सुनना चाहते ही नहीं हो तो कभी भी उसका उद्धार नहीं हो सकता। जो भगवान के विषय में सुनना ही नहीं चाहता तो वो तो कभी सोचे ही नहीं कि मेरा हृदय मेरा कभी उद्धार होगा। थोड़ी सी इच्छा, हल्की सी भी इच्छा हो कि हाँ अभी सुनना चाहता, तो ऐसे करते 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 उसके हृदय में रति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा सुनने की इच्छा हो। ठीक है, शुश्रूषु हो। और दूसरा नंबर श्रद्धा दानस्य का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक। अब जो भी श्रवण कर रहा है वो उसमें उसको संशय नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि वो ये कह रहा हो वो तो रहे पता नहीं सच्ची बोल रहे होंगे या गलत बोल रहे होंगे, कुछ पता नहीं है इनका, बोल रहे हैं बस कब से बोले जा रहे हैं। नहीं, श्रद्धा कि जो भगवान के जो इस शास्त्र में लिखा हुआ है, जो गीता और भागवतम हमें पढ़ के सुनाया जा रहा है, वो 100% सत्य है उसके अंदर। जो भी लिखा हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो एक अलग बात है, लेकिन श्रद्धा होना आवश्यक है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण के प्रति श्रवण करने से ही मेरा उद्धार होगा, कृष्ण की भक्ति से ही जो ये बताया जा रहा है। मुझे भक्ति में श्रद्धा नहीं है, वो एक मतलब भक्ति में कर नहीं रहा हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे श्रद्धा है कि ये सही है, यही करने से उद्धार होगा। भगवान कहते हैं अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर संशय है भगवान की कथा के प्रति, उसका विनाश हो जाएगा। नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना, न इस लोक में और ना ही परलोक में उसे कभी सुख प्राप्त होगा। जो संशय करता है भगवान की कथाओं में, जिसको भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं है, उसको कभी भी ना इस लोक में सुख मिलेगा और ना ही अगले दूसरे लोक में कोई भी लोक में उसको सुख प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है। और जिसके अंदर श्रद्धा है उसे क्या प्राप्त होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा है तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे भगवान की कथा श्रवण करनी है, उसी से मेरा कल्याण। श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं। यानी कि ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं कि यदि आपके हृदय में भगवान की कथा के प्रति रुचि नहीं है तब तक तो आपका जीवन ही बेकार है। लेकिन अगर इस तरह से हम जीवन बेकार तो नहीं कर सकते, कोई ये तो नहीं सोच सकता कि चलो ठीक है नहीं है मेरे हृदय में भगवान की कथा की रुचि तो फिर रहने दो। रहने कैसे दें, वही तो तुम्हारे जीवन का एकमात्र लाभ है, यही तो हमारे मनुष्य जीवन का एकमात्र फायदा है कि हम भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करें। यदि नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ व्यर्थ है, तो हमें वो कार्य करना पड़ेगा जिसके कारण हमारे हृदय में भगवान के प्रति, भगवान की कथाओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिएगा, आगे कहते हैं वासुदेव कथा रुचि, यानी वासुदेव के संदेश के प्रति रुचि उत्पन्न होना। उसके लिए क्या करना है, स्यान महत सेवया। स्यात का मतलब होता है संभव बन जाता है। अगर आपके हृदय में दो चीजें हो, एक तो आप इच्छा करते हो सुनने की और दूसरी आपके अंदर श्रद्धा है, तो फिर संभव हो जाता है। क्या करने से, महत सेवया। महत का मतलब होता है महात्मा, और महात्मा का मतलब क्या होता है, भगवान बताते हैं 7.19 में कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। जो महात्मा भगवान श्री कृष्ण को ही सर्व कारण कारण समझते हैं, जो अपने जीवन का समस्त सर्वस्व कृष्ण को समझते हैं, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना बना दिया, वो महात्मा है। और उन महात्मा को क्या करना है, सेवया। सेवया का मतलब होता है कि उनकी सेवा करनी है। महात्माओं की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से कृष्ण प्राप्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त पद द्वली भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। कि अगर आप इस संसार के दुखों से अपन छूटना चाहते हो तो उसके लिए भगवान आपकी सहायता नहीं कर सकते। भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है ना आपको, और प्रेम और भगवान की कथा अंदर रुचि जिसके अंदर होगी वही आपको देगा ना। अब जिसके पास जो चीज होगी वही देगा। भगवान के प्रति प्रेम भगवान के पास थोड़े ना होगा, वो तो स्वयं भगवान है। तो जिसके पास भगवान के प्रति प्रेम है उससे जाके आपको लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, भक्त पद धूलि, भक्त के चरणों की जो रज है उसको अपने सिर पे लगाना होगा। और भक्त पद जल, जो शुद्ध भक्त है जो गुरु महाराज है उनके चरण कमलों का जो जल है उसको सेवन करना पड़ेगा, उसको अपने शरीर पर छिड़कना पड़ेगा। भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, जो भक्त ने प्रसाद खाया होगा उसकी जो जूठन बची होगी ना वो यदि आपको प्राप्त हो जाए, ये तीन चीजें यदि प्राप्त हो जाए तो तीन महाबली बहुत बड़ा बल है। इससे आप भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न कर सकते हो। वास्तव में भक्त की कृपा की बगैर हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। एक दृष्टांत आता है भागवत महापुराण में, जब रहुगण राजा भगवान कपिल से मिलने जा रहे थे, भगवान कपिल देव से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी भेंट हुई जयभरत के साथ। तो जयभरत ने उनको ये बताया, यानी कि आप जा रहे हो भगवान, बहुत बड़ी कथा है लेकिन मैं यहाँ पर आना चाह रही थी कि उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, लेकिन भगवान ऐसे नहीं मिलते। रहुगण ने कहा क्या मतलब, तो बोले रहुगण तपस्या नहीं आती। रहुगण कान खोल के सुन लो, भगवान तपस्या से प्राप्त नहीं होते, न छिंदसा ब्रह्मचर्य से, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से भी भगवान नहीं मिलते, न ग्रहात्वा न ही घर को त्यागने से भगवान मिलते हैं, न जल अग्नि एव सूर्य, न जल के भीतर बैठ के तपस्या करने में, न अग्नि में तपने से और न ही सूर्य में तपस्या करने से भगवान प्राप्त होते हैं। तो रघुगण ने बोला कि फिर भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, तो जयभरत ने बताया बिना महत पात रजोभिषेक, महत पाद रजोभिषेक, अर्थात जो भगवान के महत, जो भगवान के महात्मा गण हैं, भक्त गण हैं, उनके चरणों की रज का जब तक आप अभिषेक नहीं कर लेते, जबकि उनके चरणों की रज में लोट नहीं लेते, जब तक उनके चरणों की, भगवान के भक्तों की चरणों की धूल प्राप्त नहीं होती, तब तक आप भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान का प्रेम आपको केवल भगवान के भक्त ही दे सकते हैं। महत सेवया, और चौथी चीज है पुण्य तीर्थ निषेवण, के पुण्य तीर्थ जहाँ जहाँ भगवान की लीला स्थली है, जहाँ पर तीर्थ है, जैसे वृंदावन धाम, मथुरा धाम, जहाँ जहाँ भगवान ने, आप भगवान स्वयं पधारे हैं और उन्होंने लीलाएं की, तो वहां पर जाकर स्वतः शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है। और जब शुद्ध भक्त का वहां का वाइब्रेशन ऐसा है कि हम वहां पर जाते हैं तो हृदय के अंदर भौतिक विचार नहीं आते, जैसे अगर हम मायापुर में चले जाते तो कंटिन्यूअस भक्तों का संग मिलता है, भक्तों के मुखारविंद से श्रवण करने को मिलता है, भक्त कीर्तन करते हैं, भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं, तो उनके इस को इस ना प्रेम आदान प्रदान को देख के हमारे हृदय में भी भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो सकती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति वाकई में अपने जीवन को लाभान्वित करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसके हृदय में भगवान की कथा के प्रति इच्छा होनी चाहिए और उसी कथा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए और पुण्य तीर्थनी सेवा, पुण्य तीर्थों में जाना चाहिए, भगवान ने जहाँ लीला की है उन जगहों पे जाकर भगवान के दर्शन करने चाहिए और वहां पर भक्तों की सेवा करनी चाहिए ताकि भगवान उनके हृदय में भगवान की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जीव के बद्ध जीवन के कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। अब यहाँ पर वास्तव में मनुष्य जीवन में दुख का कारण या बंधन का कारण यही है कि हम भगवान से विरोध करते हैं। भगवान का विरोध क्या है कि हम भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करते और स्वयं को ना प्रसन्न करना चाहते हैं, अर्थात स्वयं की इंद्र तृप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य है। हालांकि हम सब क्या है, भगवान के दास हैं, तो भगवान को प्रभुत्व नहीं जताना चाहिए, हमें हमेशा दास बनकर रहना चाहिए। लेकिन विरोध करते हैं भगवान के और इसी विरोध विद्रोह के कारण हम बद्ध जीवन में आ जाते हैं। कुछ लोग देव कहलाते हैं और कुछ असुर कहलाते हैं। क्योंकि असुर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो भगवान की सत्ता को विरोध करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई सूचना नहीं रहती। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था 16वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा था कि जो असुर होते हैं उनके हृदय में कभी भी इच्छा उत्पन्न नहीं होती है भगवान की कथाओं के प्रति, और वो बारंबार पशु योनि में उनका जन्म होता है, और भगवान पशु योनि में भगवान की कोई सूचना उनको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि भक्तों का संग नहीं होता तो भगवान के विषय में वो श्रवण करने के योग्य नहीं होते। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं, और भगवान की कृपा क्योंकि सब पर होती है तो धीरे धीरे यहाँ पर श्री रूपा जी कहते हैं कि ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार, फिर भगवान की इच्छा के कारण उनके मुक्त सेवकों की कृपा से, जब तक भगवान के भक्तों की कृपा नहीं हो जाती है तब तक किसी कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं करता। लेकिन भक्त इतने दयालु होते हैं कि वो ये नहीं देखते कि आप इस योग्य हो या नहीं हो, तो उन पर कृपा करके विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि भक्त जाते हैं हर जगह पे और उनको भगवान की कथा के विषय में सुनाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अभिन्न पार्षद होते हैं, और जब वे समाज की ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। क्योंकि भगवान के भक्तों को एक ही खतरा होता है कि कहीं संसार में भगवान की कथा समाप्त न हो जाए। सदैव भगवान की कथा होनी चाहिए, सबको भगवान के प्रति हमें बताना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। भक्त की एक ही इच्छा होती है कि जीव मात्र को कृष्ण के प्रति बताए, तो फिर वो भगवान के जो भक्त होते हैं तो भगवान के अवतार कुछ आते हैं, कभी भगवान के अवतार होकर आते हैं, कभी पुत्र बनकर, कभी दास बनकर, कभी उनके पार्षद संसार में आते हैं और भगवान की कथाओं का बखान करते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान का भक्त आके कहेगा कि मैं भगवान हूँ, ये तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है। और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहिरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं, तो बेवकूफ होते हैं या असुर होते हैं जो खुद को भगवान कहते हैं। भगवान के भक्त कभी भी ये नहीं कहते, हमेशा अपने आप को भगवान का दास ही कहते हैं। शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित सूचना प्राप्त है, जब तक शास्त्रों से पुष्टि न हो ले तब तक किसी को भी ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए, शास्त्र को देखना चाहिए। यहाँ पर आज अगर हम देखते हैं तो पता नहीं कौन कौन से भगवान बने फिरते हैं, हर कोई ने अपना एक भगवान बना दिया, ये साईं भगवान है, वो ये भगवान है, वो भगवान है, ये भगवान है, ऐसे भगवान भगवान करते रहते। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते अक्कल को यूज करो, शास्त्र को खोलो, शास्त्र में जिसकी पुष्टि नहीं है वो भगवान नहीं हो सकता और उसे भगवान का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने की इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के दासों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं। वे देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं, वे लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि भक्त जो होते हैं ना, शिष्य जो होते हैं ना, उनको क्या चाहिए कि वो अपने गुरु को भगवान की तरह से माने। लेकिन गुरु कभी भी अपने आप को भगवान की तरह से नहीं मानता है और वो भगवान का दास ही खुद को मानता है और देश काल और परिस्थिति के अनुसार लोगों को उपदेश देता है, भगवत भक्त बनने की प्रेरणा देता है। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। भक्त मानता है, शिष्य मानता है, लेकिन गुरु कभी भी नहीं सहन कर सकता कि कोई उसे ईश्वर कहे। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों के लक्षण द्वारा साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु जब तक वे अपने कानों को हाथ से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। जैसे सबको पता होता था कि चैतन्य महाप्रभु का तो शास्त्रों में उल्लेख है उनको, और बहुत सारे लोग को पता होता था, वो उनको भगवान कहते थे, लेकिन वो दोनों कानों पर हाथ रख के बोलते थे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ये मुझे क्या सुनाई दे रहा है, मुझे अपराध हो रहा है कि कोई मुझे भगवान कहे, मैं तो भगवान का एक तुच्छ दास हूँ, कोई भी मुझे भगवान मत कहो। यानी कि जो शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभु ये दिखाना चाहते थे कि आप भक्त हो, आप ये सुनना गवारा ना करो कि आप भगवान हो। वे स्वयं को ईश्वर कहवाने के का घोर विरोध करते थे, यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे। हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए भगवान ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलवाते हैं। हमें दिखाते भगवान कि जो ऐसा कहते हैं कि हम ईश्वर हैं, वो तो कभी भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्वयं भगवान भी यदि संसार में आते हैं, भगवान भी भक्त का रूप लेकर आते हैं, तो वो खुद को भगवान नहीं कहलवाते हैं, वो तो बिल्कुल दूत होते हैं जो कहते हैं कि हम भगवान हैं। ईश्वर के दास ईश्वर चेतना के प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ सब तरह से सहयोग करें। यहाँ पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनका एक ही इच्छा होती है कि भगवान की कथाओं का वितरण करें, भगवान के ना जो भी शास्त्र हैं, भगवान ये जो कथा है ना, भगवान भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता, उसका प्रसार करने के लिए आते हैं। तो हमें हम सबको चाहिए कि उनका सहयोग करें। भगवान अपने सीधी सेवा की उपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। वे तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं। भगवान को इतना अच्छा ये नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट से मेरी विग्रह सेवा करे। हमने कल पढ़ा था ना कनिष्ठ अधिकारी के विषय में, उसको खाली यही याद होता है कि विग्रह सेवा करे, लेकिन भक्तों की यदि कोई सेवा करता है तो भगवान को ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान की सेवा के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं, अपने जीवन को केवल भगवान की सेवा के लिए ही समर्पित कर लेते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान जो जिससे हम प्यार करते हैं, यदि कोई उनकी सेवा करता है तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है ना। जैसे हमें कोई गिफ्ट देता है, हमें इतना अच्छा देता, हमारी संतान छोटा बच्चा होता है उसके लिए कोई कुछ लेकर आता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। उस तरह भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है जब उनके भक्तों की कोई सेवा करता है या उनके भक्तों को महत्व देता है। श्रीमद् भगवद गीता में 18.61 में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डाल देते हैं। भगवान कहते हैं 18.69 भगवान कहते हैं न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी कोई होगा। किसकी प्रिय, किससे ज्यादा? यइमं परमं गुह्यं मद्भक्तिष्वभिदास्यते भक्तिमयि परं कृत्वा मामि वैशस्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को मेरा परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, इसे अतिरिक्त ना अधिक ना कोई मुझे प्रिय है और ना ही कभी कोई होगा। तो भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे कोई भी उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। वास्तव में यदि कथा में रुचि उत्पन्न करनी है तो भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए और हम इस तरह उनकी सेवा जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हमें जीवन का लक्ष्य अर्थात भगवान से प्रेम प्राप्त करने का जो साधन है यानी भगवान की कथा, उसमें रुचि उत्पन्न होती है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने का उत्सुक हो। यहाँ बिश्व प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि आप वाक्य में चाहते हो कि हम भगवत धाम में प्रवेश करें तो उसके लिए आपको भगवान के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न करना होगा और प्रेम उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है कि हम भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न करें। और उसके लिए क्या क्या चाहिए? शुश्रूषु शब्द दान, पहले हमारे अंदर हम सुनने की इच्छा होनी चाहिए, उसके कथा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और स्यान महत सेवया विप्र, और हमें जो महात्मा गण हैं जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करनी चाहिए और पुण्य तीर्थानि सेवनात्, पुण्य तीर्थों में भगवान के जहाँ पर तीर्थ यात्रा है जो लीला स्थल है वहां पर जाकर दर्शन करने चाहिए और भगवान से गिड़गिड़ा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ऐसे भक्तों का संग प्रदान करें जिनकी सेवा करके हम भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।